भक्ति योग, समर्पण योग, ये सब एक ही बात है। हम जहां खड़े हैं तो हम शब्दों में तो समर्पण कर देते हैं, तन मन धन सब प्रभु तेरा ही है, है नहीं, क्या लागे मेरा, ये कहने की बात है केवल। मेरे प्राण, या यूं कहिए कि मेरा मन हर चीज में फंसा हुआ है, और समर्पण वो व्यक्ति ही कर सकता है जिसको ये समझ आ गई बात कि वास्तव में ईश्वर सब कुछ है, उसके बिना मेरे दुखों का अंत ही नहीं है, जिसका फाइनल निर्णय हो गया कि उस प्रभु के बिना मेरे दुखों का किसी भी उपाय से अंत ही नहीं है, वो समर्पण का रास्ता अपनाएगा। तो महाराज जी समर्पण के लिए वाणी में बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं, कारण कर्ता जान के मन की चिंता त्याग, मंगत देह पिंड जिस दिया, रहो चरण तिसलाक। तो ये देह पिंड जिसको लेकर मैं जी रहा हूं, वो कह रहे हैं जिस दिया, जिसने दिया है, आप कहोगे माता पिता ने दिया, तो ये माता पिता ने नहीं दिया, माता पिता किसने दिए? तो देह पिंड की रचना उस प्रभु शक्ति से हुई है, प्रभु कृपा से हुई है, और रचना ही नहीं हुई है देह की, वो खुद इसमें विराजमान भी है, और इसमें विराजमान रहता हुआ वो इस देह का संचालन कर रहा है, इसलिए वो मालिक भी, इसलिए उस परमेश्वर को परमपिता कहा जाता है कि हमारा वो परमपिता है। संसार में बहुत से पिता बना लेते ना, लेकिन वो सब पिताओं का भी पिता है। तो वो ईश्वर वास्तव में मेरा मालिक है, और जो घटनाक्रम जीवन में घट रहा है उसका कारणकर्ता भी है। किसी का एक्सीडेंट हो गया, सड़क पार कर रहा है और डेथ हो गई उसकी, तो आप कहोगे ये सब सावधानी से नहीं चलता इसलिए मारा गया। भी जो स्पष्ट कारण सामने नजर आ रहा है वो तो आप यही कहोगे उसको, लेकिन जब वाणी कह रही है कारण करता है वो, तो सड़क पार करने का संकल्प उसके अंदर प्रभु ने ही डाला है, और मारा भी उसको प्रभु नहीं है। तो वो जो चक्र है ये सारा सारा, जो प्रभु के हुक्म में होता है, प्रभु शक्ति से होता है, तो वो चक्र को ही प्रारब्ध कहते हैं। तो आपकी देह प्रारब्ध के अधीन संसार में घूम रही है, और जीव अपने आप को देह समझ रहा है कि मैं देह हूं, इसलिए वो कहता है कि मैं घूम रहा हूं, जबकि जीव देह में स्थिर है, ईश्वर भी स्थिर है, देह घूम रही है, और जो सूक्ष्म शरीर है आपका मन, वो चंचलता प्राप्त किए हुए संकल्प विकल्प उठ रहे हैं, उसके अंदर हजारों प्रकार की डिजायर्स उठ रही हैं, सारी वासना उस मन के अंदर भरी पड़ी हुई है। तो सवाल ये है कि मैं इस मन और तन के बंधन में आकर और इसको अपना स्वरूप समझ के मैं ईश्वर की पूजा कर रहा हूं। तो जब तक आपके अंदर अपने बारे में सही बुद्धि ही ना आए, अपने बारे में ही सही निर्णय ना हो, तब तक ईश्वर का निर्णय आप क्या कर पाओगे? यदि उसकी उपासना भी करने लगे आप, तो देखा देखी ही करोगे जैसे समाज में प्रचलित है। तो उस उपासना से संसार का क्या बुरा हाल हो रहा है देख लो ना। जितनी भी बाहर की उपासना है जहाँ भी जो प्रचलित है, चाहे वो गिरजाघर की हो, चाहे वो मस्जिद की हो, चाहे वो मंदिर की हो, कहीं की भी हो, इन उपासनाओं के कितने दुरुपयोग हो रहे हैं आप खुली आंख से देख रहे हो। जो संसार में दुखी होता है बस जब उसकी नहीं चलती है तब ईश्वर का आसरा पकड़ लेता है कि प्रभु बड़ा परेशान हूँ, तू परेशानी से मुक्त कर दे। कोई गुरु भी मिल जाए इनको, मतलब कि साक्षात ऋषि भी मिल जाए इनको, तब भी संसारी उसके पास जाके कहेंगे कि मेरी बीमारी है, बहुत परेशान हूँ, मुझे बीमारी से मुक्त कर दो। किसको ईश्वर चाहिए? महाजी के पास भी मरी जाते थे रोग लेके, कहते थे महाराज जी, महाजी कहते थे प्रेमी ये अपना ही रोग ठीक नहीं कर सकते, तुम्हारा कैसे कर देंगे। वो चमत्कार नहीं दिखाते थे, सर्वसमर्थ थे, ऋषि सर्वसमर्थ होता है लेकिन चमत्कार नहीं दिखाते थे। महर्षि रमण के पास आ गया एक लेडी आ गई अपने मरे हुए बच्चों को लेकर, महर्षि इसमें जान डाल दी। तो संसार तो बस यही करेगा ना ईश्वर के नाम से, कि दुख तो है सब, हर जीव दुखी है, हर जीव संसार में दुखी है, ये हम अपने अनुभव से भी जानते हैं। भले ही कन्फ्यूज हूं, कन्फ्यूजन क्या है कि संसार में सुख बहुत है, जितनी कोशिश कर लूंगा उतने इकट्ठे कर लूंगा, वो एनालिसिस ही करना नहीं जानता। सांसारिक बुद्धि इसका ठीक ठीक एनालिसिस नहीं कर सकती क्योंकि ये आशा में जीती है। माँ जी कहते हैं हर मनुष्य जो संसार से विदा होता है निराशा लेकर जाता है, वो रिजल्ट का वक्त है, अंत जो समय है वो रिजल्ट है तेरे पूरे जीवन का। तू साल भर मेहनत करिए, मार्कशीट में क्या आया तेरी? तो महाराज जी कहते हैं प्रेमी पूरे जीवन की जो रिजल्ट है वो निराशा है। ये जीव घोर निराशा लेकर इस देह का त्याग करता है। तो सत्पुरुष भी क्या निराशा लेकर त्याग करते हैं देह का? सत्पुरुष तो जितना जीवन था महाजी ने यही कहा भी, ये तो परम आनंद में स्थित है, और अंदर जो अनुभव था वो वाणी बयान कर रही है। क्या आनंद है उसके अंदर, वाणी पढ़ के तो पता लगता है ना कि नाद जागृत होता है, नाद का फिर आगे जो है वो एडवांसमेंट होता है, फिर क्या उसके जो है वो मतलब कि अनुभव होते हैं, वाणी तो सारा बयान कर रही। तो एक तरफ इंद्रिय भोगों के हमारे अनुभव हैं, रोते पीटते हमारी सारी जिंदगी निकल जाती है, कमाते ही निकल जाती है, और एक सत्पुरुष का अनुभव है, वो वाणी उसका बयान कर रही है। तो दोनों की तुलना करके देख ले कि मेरा अनुभव ज़्यादा अच्छा है या सत्पुरुष का अनुभव ज़्यादा अच्छा है। वो मौत के भय से मुक्त है, मैं रात दिन मौत को याद करता रहता हूँ, हाय मर ना जाऊँ, हाय मर ना जाऊँ, बीमार ना पड़ जाऊँ, प्रॉपर्टी का चिंता लग रहती है, कोई लूट के ना ले जाए, कोई धोखा ना दे जाए। जो बिजनेस सेट किया उसका डर लगा रहता है, पता नहीं कहीं बिगड़ ना जाए, कोई नई पॉलिसी गवर्नमेंट की ना आ जाए कहीं। बड़े बड़े अरबपति फेल हो जाते हैं बिल्कुल ही, आप देखते होंगे कितनी इतनी बड़ी कंपनी बंद हो जाती है, नामो निशानी मिट जाता है उनका। तो संसार में तो हर चीज बिल्कुल अनिश्चित है, तो इसीलिए जब तक आप संसार में परेशान नहीं होते, उस परेशानी को आप अनुभव नहीं करते, अनुभव का मतलब है आपकी बुद्धि इस निर्णय पर नहीं पहुंचती कि संसार में चैन नहीं है, बड़ी बेचैनी है, तब आप गुरु की तलाश करते हो या वो रास्ता तलाश करते हो जिसको हम ईश्वर का रास्ता कहते हैं, क्योंकि सुनी रखा है आपने ईश्वर के रास्ते में बड़ा चैन है। तो चैन प्राप्ति के लिए आप जो है गुरु के पास जाते हो या ईश्वर की खोज करते हो। तो ऐसे व्यक्ति को जब गुरु मिलता है तब वो गुरु की बात ध्यान से सुनता है। सुखी आदमी गुरु के पास जाएगा ही नहीं। ये चला भी गया तो महाजी के पास भी कई सेठ आते थे, कई लोग आते थे। वो प्रेमिया भगवान ने बड़ी दौलत दी है, भोगो उसको, यहाँ क्या रखा है, टरका देते थे उसको। इसीलिए वाणी तो कह रही है, दुखी जीव की सुन पुकार, सतगुरु आए जगत उद्धार। दुखी जीव की पुकार सुनकर गुरु उसका जगत से उद्धार करने के लिए आते हैं, अर्थात उसके सामने प्रकट होते हैं या उसका उससे संबंध बनता है। तो अब गुरु संसार में सुख कैसे प्राप्त होगा उसका रास्ता नहीं बताते। पूरी संतावास पढ़ लो, संसार में कैसे सुख मिलेगा कहीं लिखा हुआ है? क्योंकि गुरु का तो पहला ही निर्णय ये संसार दुख रूप है, तो सुख के रास्ते आपको क्या बताएगा? इसीलिए जिसको हम विधि कहते हैं, प्रभु का कहते हैं विधि का विधान, तो विधि किसकी है? ईश्वर की विधि है। तो विधि का मतलब क्या है? कि आपको या आपके मन को वो प्रभु इस संसार से उजाड़ने आए हैं। आप मन को संसार में बसाने के लिए आए हो, उसके लिए पुरुषार्थ करते हो, और सत्पुरुष आपके मन को संसार से उजाड़ता है। पूरी समतावलास पढ़ लो, कहीं मन को संसार में लगाने की बात लिखी है वहां पर? कहीं एक जगह बता दो मुझे, लिखी है? ध्यान से पढ़कर तो देखो, पूरा शास्त्र मन को इस संसार से उजाड़ने के लिए आया है। लेकिन आप उजाड़ने को तैयार नहीं हो, दुख भोगते रहोगे। लेकिन मन को संसार से उजाड़ने को तैयार नहीं, और गुरु का सारा प्रोग्राम इस मन को 100% संसार से उजाड़ने आया है। तो इसका मतलब जिस जीव का यह निश्चय हो चुका कि संसार दुख रूप है, वही तो गुरु का आसरा पकड़ेगा, नहीं तो चतरा ही करता रहेगा कि मैं सिमरन भी कर रहा हूं, मैं ईमानदारी से कमा भी रहा हूं, लेकिन मन उसका संसार में ही जमा रहेगा, संसार के सुखी भोगता रहेगा। उसके मन में यह निश्चय आएगा ही नहीं कि संसार दुख रूप है। कहेगा हाँ आते हैं बीच बीच में, उसके रास्ते में निकाल लेता हूं। तो अर्जुन जब कृष्ण के सामने खड़ा है, वो तो अर्जुन की परिस्थिति ऐसी है कि उसको संसार में विनाश के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। यदि ये युद्ध हुआ तो पूर्ण विनाश हो जाएगा, सारे पुरुष तो मारे जाएंगे, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी सारी सारी, फिर देश का क्या होगा, राज्य का क्या होगा, कौन भोगेगा? तो उसको पूर्ण बर्बादी नजर आ रही है। इसीलिए कोई रास्ता जब उसको नजर नहीं आ रहा है तो कृष्ण का आश्रय ले रहा है, और कृष्ण उसको सारा समझाने के बाद, सारा ज्ञान देने के बाद क्या कह रहे हैं अंत में? एक ही चीज कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। धर्म का मतलब है जहां जहां तेरी बुद्धि के निश्चय खड़े हुए हैं उस सारे निश्चय का तू त्याग कर दे, केवल मेरी शरणागत हो जा, अर्थात मैं ही तेरी मंजिल हूं, मैं ही तेरा रास्ता हूं। तो कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता। अब अर्जुन के सामने दो ही रास्ते थे, या तो अपनी इच्छा से युद्ध करे लोगों को हराने के लिए, या फिर कृष्ण के आगे समर्पण करे। तो ब्लाइंड निर्णय नहीं मांगा था कृष्ण ने, उसको हर चीज का भेद खोला था, गीता उसका भेद को तो खोल रही है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि एक ही रास्ता है, अब तू पूर्ण समर्पण कर ले। तो अर्जुन ने वही किया। अर्जुन को बात समझ में आ गई, इसलिए कह रहा है स्मृति लब्धवा, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई, मेरी बात समझ आ गई, मेरे संशय सारे निवृत्त हो गए। इसका मतलब उसको ये पता लग गया कि इस जगत के अंदर और इस देह के अंदर वो ईश्वर सत्ता ही है जिसके हुक्म के अंतर्गत ये सारी रचना रची जा रही है। उसके अलावा दूसरा कोई मनुष्य कारणकर्ता नहीं है इसका। जबकि जिसके अंदर ईश्वर निश्चय नहीं है, संसारी निश्चय बैठे हुआ है, भोगों के सुख का निश्चय बैठे हुआ है, उसके लिए कारणकर्ता मनुष्य ही नजर आ रहे हैं। इसीलिए वो मनुष्यों के बीच के बीच में घूम रहा है, उन्हीं के बीच में सुख भोग रहा है, उन्हीं के बीच में दुख भोग रहा है, उन्हीं के बीच में कारोबार कर रहा है, उससे ऊपर दुनिया ही नहीं है उसकी। और ईश्वर कहीं सुन भी रखा है उसने, तो ईश्वर का उपयोग भी वो इसी वास्ते करना चाह रहा है कि जो संसार में झंझटे हैं ये किस तरह ईश्वर कृपा से सॉल्व हो जाए, इसके ऊपर कोई सोच नहीं है उसकी। तो जैसे हम दुनिया के साथ व्यापार करते हैं, ऐसे ईश्वर के साथ भी व्यापार करते हैं। तो पहले मुझे यह समझना पड़ेगा कि यदि मैं संत अवलाद ध्यान से पढ़ता हूं या गीता ध्यान से पढ़ता हूं, कोई भी शास्त्र पढ़ता हूं, तो मैं देखूं तो सही, प्रोग्राम दिया क्या हुआ है। महाजी कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, समर्पण की सीधे बात नहीं कर रहे हैं वो। महाजी कह रहे हैं प्रेमी यदि तूने ईश्वर मार्ग पर चलना है तो सबसे पहले खोटे कर्म तो त्याग कर। स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं प्रेमी जीवन सादा तो बना, पहले तो खोटे कर्म त्यागने की बात कर रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं सादा जीवन बना। इसका मतलब मैंने जो माया बहुत फैला रखी है संसार में, अपना मन को बहुत फैला रखा है संसार में, धीरे धीरे सिंपल लाइफ बना। तो सिंपल लाइफ की में क्या होता है, ज्यादा भोग की तमन्ना होती है क्या, बड़ा फैशन करने की तमन्ना होती है क्या, बहुत माया इकट्ठे करके जोड़ने की तमन्ना होती है क्या। सादे जीवन वाले को थोड़ी कमाई चाहिए, थोड़े से पदार्थ चाहिए, सिंपल सी जगह रहने को चाहिए, सिंपल से वस्त्र पहनने को चाहिए। इतना काम वो कर सकता है, सत्य बोल के कर सकता है, सत्य के रास्ते पे चल के कर सकता है। जिसको बहुत चाहिए वो टैक्स चोरी भी करेगा, वो लोगों को भी धोखा देगा, व्यापार में भी जो है वो धोखेबाजी करेगा और लोग भी उसके साथ धोखेबाजी करेंगे, यही चलता रहता है दुनिया। तो यदि सिंपल तरीके से देखें तो गुरु आपको, यदि साधारण व्यक्ति भी गुरु के पास पहुंचेगा तो उसके लिए रास्ता क्या बता रहे हैं, रास्ता तो एक ही बता रहे हैं, सबसे पहले जो मैं जानता हूं संसार में गलत क्या है और सही क्या है उस गलती को तो त्याग करूं मैं। शास्त्र की बारीक बातें तो बाद में समझ में आएंगी, लेकिन मोटी मोटी बातें जो आप समझते हो उसको तो ठीक करो पहले, तब ईश्वर मार्ग पर चलने की बात होगी आपसे। उसके बाद गुरु पहली ही कंडीशन कर रहा है कि सादगी से जीवन अपनाओ, और सादगी के साथ वो दूसरी क्या बात कर रहा है कि मर्यादा की मर्यादा का जीवन अपनाओ। मतलब कहने का ये है कि धीरे धीरे वो आपको श्रिंक कर रहा है, सिकोड़ रहा है, इंद्रिय भोगों को, आपका मन जो संसार के तरह तरह के लवाजमात में फंसा हुआ है, हर एंगल से वो मन को वहां से समेट रहा है। और साथ में फिर क्या कर रहा है, सेवा करो। यदि तेरे पास है भी तो कह रहा है कि दीन दुखियों की सेवा करो, और वो भी निष्काम भाव में, कि कारणकर्ता परमेश्वर है, कारणकर्ता मैं नहीं हूं, तन मन धन ये तीनों ईश्वर का है, उसने दिया है तो उसी का है वो। तो ये तन मन धन उसका जानकर तूने दीन दुखियों की सेवा करनी। तो जब आप दूसरे के दुख के बारे में सोच रहे हो नहीं, तो अपने दुख के बारे में आपके अंदर जो तड़प है ना वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो ये स्वार्थ भावना से मुक्त करना, तो स्वार्थ भावना क्या, भोग भावना ही तो स्वार्थ भावना है, कि अपने आप को देह समझना और देह के भोगों में जीवन खर्च करना, ये तो स्वार्थ भावना है। तो स्वार्थ भावना से मुक्त करने के लिए गुरु सारा प्रोग्राम दे रहा है आपको, लेकिन धीरे धीरे आपको लाइन पे ला रहा है। तो पांच नियम जब संतावलासे महाराज ने लिखे तो उन्होंने ये नियम किस वास्ते लिखे थे, क्या लिखा हुआ है ऊपर वहां पर हेडिंग, आत्मिक उन्नति के नियम। तो आत्मा तो पहले ही उन्नत होती है, उसके आत्मा की क्या उन्नति होगी। आत्मिक उन्नति का मतलब है मेरी उन्नति आत्मा के मार्ग में, मेरी उन्नति ईश्वर के मार्ग में। आत्मा से मिलन करने के लिए, ईश्वर से मिलन करने के लिए मैंने उन्नति करनी है, और संसार में भोग बढ़ाने के लिए मैंने उन्नति करनी है। तो गुरु आपको यही सिखाता है कि सबसे पहले संसार में भोग बढ़ाने का रास्ता ये पतन का रास्ता है, इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो घोर तमोगुण है। तूने यदि कमाई बढ़ाता रहा, भोग बढ़ाता रहा, तो तेरा ये होगा कि तू तेरी बुद्धि में ऑटोमेटिकली भोगवृत्ति जब गहरी होगी तो घोर रजोगुणी हो जाएगा, और घोर रजोगुण ऑटोमेटिकली तमोगुण में बदल जाता है। जैसे बड़े बड़े राष्ट्र आप देख लीजिए, ये खत्म क्यों गए, दुनिया के नक्शे से ही मिट गए बड़े बड़े राष्ट्र, क्योंकि बुद्धि पे पर्दा जब अज्ञान का बढ़ जाता है या भोग का बढ़ जाता है, महाराज कह रहे हैं प्रेमी तो ये जो मेटेरिस्टिक बुद्धि है, भोगवादी बुद्धि है, ये मायावादी बुद्धि है, ये तो ये क्या करती है, फिर ये निर्णय इसके गलत होने लगते हैं, सही गलत का भेद ही इसके सामने बन जाता है। इसीलिए बड़े बड़े राजा दूसरे राष्ट्रों पर जो है वो अटैक करते नहीं करते, अरे भाई अपनी अपनी सीमा में रहो, क्या मुसीबत है, लेकिन नहीं अटैक करते हैं, दूसरों को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। आप देखो ना इराक ने क्या करा था, कुवैत छोटा सा राष्ट्र है इराक के बराबर में, उसी पर अटैक कर दिया उसने, तो नतीजा क्या निकला है, इराक जो है वो एक तरह से ख़त्म ही हो गया, वो इराक कहाँ रहा। तो सबकी नज़र एक दूसरे पर है, अमेरिका की नज़र फिर इराक के तेल पर है, उसकी कुवैत के तेल पर थी, अमेरिका की नज़र है इराक के तेल पर। ये भोगवाद का जमाना है ना, संसार में यही होगा। तो संसार में जो माया की प्रगति है, तो सत्पुरुष आपको वो आईना दिखा रहा है, ये माया की प्रगति नहीं है, ये तेरे मौत का रास्ता खुल रहा है, अर्थात बेचैनी का रास्ता खुल रहा है। जितनी तेरी माया बढ़ेगी, भविष्य में तेरी बेचैनी ही बढ़नी है, चैन नहीं मिलेगा तुझको। तो इसीलिए जब मैं शास्त्र को बारीकी से पढ़ता हूँ, शुरू शुरू में बारीकी समझ में नहीं आती आपको, मोटी मोटी बातें समझ आती हैं। महाजन ने कहा सादगी धारण करना, भाई मैं 8 कपड़े रखता था अपने पास, अब मैं 6 कपड़े में काम चलाऊंगा, बड़े फैशन के पहनता था, वो फैशन वाले नहीं पहनूंगा। आप इस तरह से सादगी अपनाओगे शुरू शुरू में, लेकिन वो बेसिक प्रिंसिपल तो देखो, वो सादगी कह क्यों रहे हैं, मैंने उस राज को भी तो समझना है। जीवन सादा न होने से मेरा मन जो है संसार में ही फंसा हुआ है, बड़ा गहरा फंसा हुआ है। और पांच नियम वो एक साथ पालन करने को कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि पहले सादा हो जाइए फिर सिमरन करिए। तो सिमरन जब गुरु के अनुसार मैं करने बैठूंगा घंटा भर, तो मन मेरा वही जहां फंसा हुआ वहीं भागेगा, तब मुझको समझ आएगा ये तो मेरे लिए मुसीबत है। ये सिमरन तो अच्छी चीज है, ये ईश्वर से मिलाएगी मुझको, और मन मेरा सिमरन में लगने को तैयार ही नहीं है, ये संसार में फंसा हुआ, और 10 साल हो गए सिमरन करते करते उसका वही हाल। तब आपको समझ आएगी ये क्यों गुरु ने कहा है। ये बाहरी जीवन जब तक तेरा शुद्ध नहीं होगा, बाहरी जीवन जब तक सादा नहीं होगा, और शास्त्रों के मर्म को जब तक बुद्धि तेरी समझने वाली नहीं होगी, तब तक ये अंदर मन लौटेगा नहीं। इसलिए संतावलासे ने यह भी तो लिखा हुआ है, जरा पढ़ के तो देखो ध्यान से, कि बिना विवेक और बिना वैराग्य के सही अभ्यास नहीं हो सकता। सही अभ्यास कौन सा होगा, जो सिमरन में मन लग जाए, मन को सिमरन प्रिय लगने लगे, वो सही अभ्यास होगा। अभी तो कड़वी घूंट लगता है, इसका मतलब कितना लंबा रास्ता मैंने तय करना है। और मैं कह रहा हूं शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मैं सब जानता हूं, सिमरन करना चाहिए, 10% दान करना चाहिए, बेईमानी नहीं करनी चाहिए और सीमा में अपनी रहनी चाहिए। बस कोई मोटी मोटी बात, दो चार बातें मैंने कर ली और सारी सीमाएं को तोड़ भी रहा हूं मैं, मेरी सीमा ही कोई नहीं। तो बिना गहरे विचार के शास्त्रों के आपकी बुद्धि उस मर्म को समझेगी नहीं। सत्संग भी सुन लोगे लेकिन ऊपर ही ऊपर से, खुद मनन करने की जब तक आदत नहीं होगी तब तक बुद्धि सत्संग को भी सही श्रवण नहीं कर पाएगी। सुन भी लिया तो अंदर टिकेगा नहीं वो। तो इसीलिए सत्पुरुषों के विचार पर बार बार मनन करने की जरूरत होती है, तब जाकर वो राज बुद्धि के आगे खुलता है। और राज भी किसके आगे खुलता है, जो केवल पढ़ता रहता है उसके आगे नहीं खुलेगा कभी भी राज, उसी के आगे खुलेगा जो गुरु के बताए हुए मार्गदर्शन के अनुसार उस प्रोग्राम पर चल पड़ा है और साथ साथ वो ये भी कर रहा है, स्वाध्याय भी कर रहा है, मनन भी कर रहा है। तो धीरे धीरे महाराज कहते हैं प्रेमी जब ये 5 नियम का पालन करता है तो बुद्धि में बल आ जाता है। तो बुद्धि में लड़ने का बल नहीं आ जाता, तर्क करने का बल नहीं है। बुद्धि बल का मतलब यह है कि बुद्धि के अंदर संसार के भोग का त्याग करने की शक्ति आ जाती है और ईश्वर के या गुरु के बताए हुए मार्गदर्शक अनुसार वो अंदर जाने की तैयारी करता है, जिसमें वो सफल हो जाता है। तो यह है बुद्धि बल। तो अंदर मन टिकने लगता है उसका। तो अब बताइए, महाजी कह रहे हैं प्रेमी सिमरन करने बैठोगे तो सिमरन के वक्त ईश्वर प्रायणता होनी चाहिए। तो ईश्वर प्रायणता का क्या मतलब है? तो ईश्वर प्रायणता का मतलब है कि तेरा मन जो चिंता ग्रस्त रहता है, बार बार बाहर भागता है, कहीं ये काम ना बिगड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, तो कहते हैं कि जो होना है वो होके रहेगा, वो निश्चित है, इसलिए तू चिंता क्यों करता है, तू निश्चित होकर सिमरन कर। तो वाणी तो कह रही ना कि जो होना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही, आगे पीछे ना कर सके तिल भर तिस फरमाई। मुझे जीवन भर इस बात पे विश्वास नहीं आता, कहता रहता हूं, गाता रहता हूं, मेरे करने से ही होगा। तो समर्पण तो हर जगह चाहिए आपको। तो जिसने अपना जीवन सादा बना लिया है, सिकोड़ लिया है, तो ज्यादा चिंता कहां रहती है उसको? सादे व्यक्ति का क्या बड़ा नुकसान हो जाएगा? कोई धन्ना सेठ होगा उसका बड़ा नुकसान होगा? तो निश्चिंत होगा प्रभु का सिमरन करता है। तो ये सारे सूत्र हैं सिमरन में सफलता प्राप्ति के लिए, कि तूने यदि सिमरन में सफलता प्राप्ति करनी है, अर्थात ईश्वर का अंदर अनुभव करना है, तो तुझको इस सूत्र को जीवन में अपनाना ही पड़ेगा। जबरदस्ती नहीं, इस सिद्धांत को समझकर कि वास्तव में यहां पर जो है इस सृष्टि में पत्ता भी बिना ईश्वर हुक्म के नहीं हिलता, सारी सृष्टि प्रभु के अधीन ही काम कर रही है। मेरी देह, सूर्य, चंद्रमा, ये बाहर की जितनी भी प्रकृति है, ये सब उसके हुक्म के अंतर्गत ही काम कर रही है। हर चीज से मुझको सुख भी मिलता है, मुझको दुख भी मिलता है, मेरे काम बनते भी, मेरे काम बिगड़ते भी हैं, वो सब ईश्वर हुक्म के अंतर्गत हो रहा है। तो इसीलिए जब तक आपके अंदर अपने बारे में या प्रकृति के बारे में विवेक ही नहीं आया, सही समझ ही नहीं आई, तो वैराग्य कैसे होगा? वैराग्य का मतलब यह है मन के अंदर जो आसक्ति थी भोगों के प्रति, संसार के प्रति, वो आसक्ति मन की टूट जाती है। बुद्धि को यह समझ आ जाती है कि इसमें जीवन का कल्याण नहीं, जीवन की वास्तव में बर्बादी है, जैसा कि शास्त्र में लिखा हुआ है, जैसा कि गुरु कह रहा है। तो इसमें वो जीवन की बर्बादी देखने लगता है, इस संसारी जीवन में। तो जो संसारी जीवन में बर्बादी देखने लगेगा, वो ईश्वर के लिए जिएगा या संसार के लिए जिएगा? तो इसलिए दिल से वो ईश्वर की याद करता है, ईश्वर उसके जीवन का लक्ष्य होता है, और जीने का पर्पज ही कोई नहीं होता उसका। तो वो दिल से जानता है प्रभु के सिमरनकार ने ये दुर्लभ जीवन पाया। वो जानता है कि मानुष जन्म सफल हुए जब प्रभु दाता चित्त आए। कैसे सफल होता है मानव जीवन? जब प्रभु दाता चित्त में बस जाते हैं, हर समय उसकी याद आती है। अरे जिसकी आपको जरूरत महसूस होती है, जिस पे आपका जीवन निर्भर करता है, उसके हर समय याद नहीं आती आपको? पिता की हालत ऐसी ना रही हो कि वो कमाने लायक है, बेटा कमाऊ पूत है, तो पिता को बेटे की याद नहीं आएगी? अरे बेटा बीमार पड़ गया तो घर में कौन कमा के लाएगा, घर का गुजारा कैसे होगा? जिसकी जितनी ज्यादा जरूरत महसूस होती है उतनी ज्यादा याद आती है। तो भक्त को ईश्वर से ज्यादा जरूरत महसूस नहीं होती किसी चीज की। बौद्धिक रूप से वह परिपक्व है, विवेक उसका स्ट्रांग है और संसार से उसके अंदर विरक्ति पैदा हो चुकी है। वो जानता है संसार में कुछ नहीं रखा हुआ, संसार के लिए जीवन व्यतीत करना ये जीवन की बर्बादी है, वो समझ चुका है, उसकी बुद्धि इसको स्वीकार कर चुकी है, गहरा शास्त्रों का मनन कर चुका है वो ऑलरेडी। तो इसलिए उसकी बुद्धि से विवेक स्लिप नहीं होता। हम तो तपोभूमि में बैठे हुए हैं, अभी यहाँ के वातावरण का प्रभाव हमारे पर है, सत्संग का प्रभाव है, खाने पीने का प्रभाव है, और हमारा जो दैनिक जीवन यहाँ चल रहा है उसका प्रभाव है। यहाँ से घर जाएंगे फिर देखेंगे, ये प्रभाव हफ्ता दस दिन रहेगा, फिर वही महीना रहेगा, फिर वैसी हो जाएगी, क्योंकि ये टेम्परेरी प्रभाव है ना। जब बुद्धि में विवेक स्थायी होता है, स्थिर होता है, और उस विवेक के प्रकाश में वैराग्य स्थिर होता है, तब आपका सिमरन भी स्थिर हो जाता है। फिर प्रभु की याद के अलावा आपको और कोई प्रिय चीज नहीं लगती। फिर खाना खाते हो, क्या बना है, क्या स्वाद है, वो आपको ख्याल वहां नहीं रहता, ध्यान आपका प्रभु में रहता है। खाना खाते हो पेट भरने के लिए, खा लिया तो छुट्टी हो गई, ऑटोमेटिकली आपका आहार सादा हो जाता है, आपका स्वभाव ही ऐसा बन जाता है। तो आप बताइए, जाना मैंने अंदर है, वो आनंद रूप परमेश्वर इस देह के अंदर उसका स्थायी निवास है, और मैं संसार की दौड़ में व्यस्त हूं। गुरु जब कह रहा है कि भाई कमाई कम करनी पड़ेगी, घंटे तुमने निर्धारित करने पड़ेंगे, मान लिया 24 घंटे होते हैं दिन में, तो 8 घंटे कमाई करनी है, 6 घंटे मैंने 7 घंटे सोना भी है, घर के काम भी करने हैं, फिर मैंने सुबह शाम 2-2 घंटे सिमरन भी करना है, फिर शास्त्र का स्वाध्याय भी करना है कम से कम घंटा भर मैंने, तो मैं प्रोग्राम बनाऊंगा ही नहीं, कमाई के साधन कम ही नहीं करूंगा, जब सीमित समय के अंदर जब मैं संसार का व्यवहार नहीं करूंगा, तो पूजा पाठ के लिए स्वाध्याय के लिए वक्त बचेगा कहाँ मेरे पास? फिर तो यही कहता रहूंगा, अरे महाजी ने पता नहीं कैसे लिख दिया है, आज के इतने व्यस्त समय में ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता यहाँ, मैंने गुजारा ही नहीं चलेगा, तो फिर यही कहोगे आप। तो इसीलिए जब तक मेरे अंदर ये बात बैठ नहीं जाती, या बुद्धि का ये निर्णय फाइनल हो नहीं जाता कि संसार में यदि मैं संसारी तरीके से जिया तो मेरी जिंदगी में बर्बादी के अलावा मेरे कुछ हाथ लगना नहीं है, और ये निर्णय भी आप तभी कर पाओगे जब गुरु के ज्ञान पर आपने गहरा मनन किया है, उसको समझने की कोशिश की है। तो ऊपर ऊपर से सत्संग सुन लेने से, ऊपर ऊपर से कुछ पाठ कर लेने से कुछ नहीं होता है, गहरे विचार में उतरना ही पड़ता है, तब आपका शास्त्र के प्रति, गुरु के प्रति या ईश्वर के प्रति आपका समर्पण होता है। जैसा जैसा वो कह रहे हैं वैसा वैसा आपकी बुद्धि स्वीकार करती है और उसके अनुसार ही वो चिंतन मनन करती है। तो समर्पण का मतलब ये है कि महाजी कह रहे हैं प्रेमी कि जब तू ईश्वर मार्ग पर चल पड़ता है, तेरी कुछ यात्रा तय हो जाती है, तब वो आगे क्या कह रहे हैं देखो, वो कहते हैं कि तू परोपकारी कर्म कर, जिनकी फाइनल छलांग लगने वाली होती है, अर्शार अर्थात जो है इस मार्ग में अंदर आगे बढ़ चुके वो, तो उनके लिए कह रहे हैं कि परोपकार से आत्मानंद जागृत होता है। कैसा परोपकार? वो निष्काम कर्म वाला परोपकार। स्वार्थ कर्म तो तेरे पहले ही छूट चुके, बेयर मिनिमम चल भी रहे हैं तो उसमें तेरा चित्त नहीं है। और स्वार्थ का जो जीवन था वो भी तेरा, क्योंकि ये बात फिर आखिरी जन्म में जाके होती है, इस तरह का जीवन जो आखिरी जन्म में मिलता है, तो वहाँ स्वार्थ कर्म तो उसके रह ही नहीं जाते, बहुत बेयर मिनिमम प्रारब्ध भी ऐसा मिलता है उसको, और परोपकारी कर्म का करने का उसको मौका मिलता है वहाँ पर। उसमें भी वो कह रहे हैं कि जो कर्म करने का मौका मिला है उसमें भी प्रभु आज्ञा ही देख, और जो उसका जो परिणाम है उसको भी प्रभु इच्छा जानकर त्याग कर दे। जैसा प्रभु ने कर्म करा लिया, प्रभु ने करा लिया उसके अंदर होश बने हुआ है, और जो उसका नतीजा निकला वो भी प्रभु की इच्छा पूर्ण हुई है, तेरा उससे कोई संबंध नहीं है। तो परोपकार करके भी ना कर्म से तेरा संबंध है ना उसके फल से तेरा संबंध है। अब विचार करिए, जिसका कर्म से भी संबंध टूट चुका, फल से भी संबंध टूट चुका, उसका मन कहाँ जाएगा? ईश्वर में जाएगा नहीं जाएगा? और आखिरी मंजिल में जो आखिरी क्रिया होनी है वो क्या होनी है कि मैं ईश्वर का अनुभव कर रहा हूं, मैं मौजूद हूं, ईश्वर का अनुभव कर रहा हूं, वहां द्वैत मौजूद है। अब ये द्वैत भी रहना नहीं है, वो जब कह रहे हैं कि केवल आत्मा ही है, केवल ईश्वर ही है, जो ज्ञान योग का एंड है, तो भक्ति योग का भी तो एंड वही है। प्रभु तू करता तू हरता सर्व तेरी आज्ञा, मैं हूं ये जीव के लिए बंधन बना हुआ है, इसलिए जीव जल्दी से जल्दी उस ईश्वर के साथ एक होना चाहता है। तो समाधि के बाद बचा क्या? करने को क्या बचा? कुछ बचा क्या? लेकिन तेरा जो ये अहम है, तेरी जो अपनी अलहदगी है ईश्वर से, ये तेरे लिए बोझ बनी हुई है। ईश्वर से अलहदगी तेरे लिए बोझ बनी हुई है, लेकिन कोशिश तेरी काम नहीं कर सकती वहां पर। तो इसीलिए प्रभु के लिए रोता है बस, केवल वो प्रभु अब जो करना है तो नहीं करना है, प्रभु अपने साथ मुझे एक कर, अब मुझे अलहदगी बर्दाश्त नहीं होती, प्रभु अपने साथ एक कर। तभी महाराज जी को देखो ना, 14 साल लग गए। जलमादा में उन्होंने कहा कि प्रेमी जिस चीज की 14 वर्ष से तलाश थी वो आज इनको प्राप्त हुई। तो कितना घोर पीर ख्वाजा के जंगल में करते थे वो, उसके बाद भी 14 साल लगे उनको उस अलहदगी को से मुक्त होने में, जिसको आत्मलीनता ही कहते हैं, अर्थात जीव स्वरूप जो है वो चेतन सत्ता में के साथ एक हो गया। वहां जाके जीव को बोध होता है कि रियलिटी ये है। तो गुरु ने आपको कहां पहुंचाना है और आप कहां खड़े हुए हो, और यहां पे इतने लापरवाह हो कि आप उसका आज्ञा ध्यान से पढ़ने को तैयार भी नहीं हो। जैसे आपके अंदर वासना है, जैसा आपका स्वभाव है, उसी के अनुसार अपना प्रोग्राम बना लेते हो, उसी के अनुसार सोचते रहते हो, फिर कहते हो पढ़ने की क्या जरूरत है, मैं जानता हूँ सब कुछ। अरे इतने घंटे सिमरन करना है, इतने घंटे कमाना है मैंने, इतने % दान करना है, बस दो चार मोटी मोटी बातें कर ली, इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, मैंने ईश्वर प्राप्ति करनी है भाई, इस संसार के दुखों से परमानेंट मुक्ति प्राप्त करनी है, जन्म मरण से परमानेंट छुटकारा प्राप्त करना है, तब दुखों का अंत होगा। क्योंकि जब तक जन्म है तब तक मरण भी है, जब तक जवानी है तब तक बुढ़ापा भी है, जब तक स्वास्थ्य है तब तक रोग भी है, जब तक सुख है तब तक दुख भी है, ये सारा जगत तो द्वंद्व रूप है, एक चीज कभी नहीं मिलती यहां पर। हर मनुष्य को एक चीज चाहिए, क्या? मन के अनुकूल। तो जगत की रचना ही जब द्वंद्व रूप है, प्रभु की प्रकृति का विधि विधान ही ऐसा है, तो तेरे मन की कैसे चल जाएगी यहां पर। इसलिए तूने इस धरती पर जब तक रहना है तूने बेचैन ही रहना है। ये पूरे पूरे प्रकृति चक्र का मैनेजमेंट यही है, ये निजाम ही ऐसा है। इसलिए इस कन्फ्यूजन से मुक्त हो जा तू कि संसार में सुखी हो जाऊंगा मैं या बच्चों को सुखी कर लूंगा अपने में। ये सब मानसिक क्लेश में रहते हुए ही जिएंगे और उस क्लेश को लेकर ही मरेंगे, ये इनका कोई रास्ता नहीं है। रास्ता यदि चैन का है वो केवल ईश्वर से होकर जाता है, याद रखो। और ये मैंने शास्त्र पर गहरा मनन करके ये बात सीखनी है। जो वचन लिखा है वहां पर, जो सिद्धांत लिखा है, उस सिद्धांत को मैंने, उस सिद्धांत के अनुसार मैंने संसार का निरीक्षण करना है, उस सिद्धांत के अनुसार निरीक्षण करना है, फिर वो सिद्धांत आपको संसार में सही सिद्ध होता हुआ नजर आएगा। जब तुझे सही सिद्ध होता हुआ नजर आएगा तब तू उसको मानेगा, इतनी आसानी से नहीं मानेगा। तो इसीलिए जो फाइनल निर्णय ऋषियों का है कि राजा दुखिया, राणा दुखिया, दुखिया कुल संसार, मंगत सुखिया सो भया जिस शोभा पाई करता है। जिसने अंदर ईश्वर का की शोभा को पाया, सुखी का मतलब वहां क्या है, बेचैनी से वही मुक्त हुआ, मन के अंदर चैन उसी के आया, क्योंकि वहां द्वंद्व नहीं है। और संसार में हर चीज द्वंद्व रूप है, यहां सर्दी है तो गर्मी मौजूद है, सूखा है तो बरसात मौजूद है, फूल है तो कांटे मौजूद है, दिन है तो रात मौजूद है, हर चीज का तो द्वंद्व है। आप तो इसीलिए पूरी प्रकृति द्वंद्व रूप है, मित्रता है तो दुश्मनी भी है, हर चीज द्वंद्व रूप है। तो इसलिए सीधी सी बात है, तेरा कोई संगी ना साथी, नित साजन जाए अकेला, मंगत उठ प्रभु नाम सिमर लो, ये झूठ जगत का मेरा। यहाँ झूठ जगत का क्या है, यहाँ सुख की आशा में हम दुख भोगते रहते हैं, लेकिन ठीक ठीक एनालिसिस ना करने के कारण ना हमारा संसार से चित्त हटता है कभी, ना ईश्वर के प्रति हमारा कभी समर्पण हो पाता है। तो समर्पण उसी का होगा जिसकी बुद्धि में विवेक है, और उस विवेक के बल पर उसके मन के अंदर संसार के भोगों के प्रति वैराग्य भाव रहता है, डिटैचमेंट रहता है, और ईश्वर के प्रति अनुराग पैदा होता है इसी विवेक और इसी वैराग्य के कारण। तो उस अनुराग के बल पर ही इसका संसार में पूर्ण समर्पण होता है और ईश्वर प्राप्ति होती है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।